पृष्ठ संख्या 194। 1923 ईस्वी में सुन ने यह स्वीकार किया कि उनका तीसरा सिद्धांत उपयुक्त सभी सिद्धांतों में सर्वोत्तम था और सामाजिक सिद्धांतों के परीक्षण के लिए भी तुलनात्मक रूप से बेहतर था। सुन सबसे पहले समाजवादी थे क्योंकि उन्होंने भूमि के समान वितरण का प्रचार किया, जो उनके राजनीतिक जीवन की सबसे प्रमुख नीति थी। उन्होंने हर समय एक समाजवादी राज्य के निर्माण की इच्छा जाहिर की, जहां हर नागरिक आराम और सुख से रह सके। उनका क्रांतिकारी उद्देश्य जनता का कल्याण और उसकी आजीविका से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढता था। सुन के सिद्धांत उस चीनी परंपरा पर आधारित थे जिसमें संपत्ति का समान वितरण मुख्य था। सुन के विचार पश्चिमी विकासवादी सिद्धांतों अमेरिकी क्रांति, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति, रूसी समाजवादी क्रांति और एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, हेनरी जॉर्ज और जॉन स्टुअर्ट के विचारों से प्रभावित थे। यहाँ सुन यातसेन के विचारों पर रूसी क्रांति के प्रभाव को रेखांकित करना प्रासंगिक होगा। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति ने पश्चिम के साथ साथ एशिया और विशेषकर चीन के हितों की पूर्ति के क्षेत्र में आशा का नया संचार किया। अन्य चीजों के अलावा 1919 ईस्वी में लेलिन ने कारखाना घोषणा पत्र के अनुसार चीन पर से रूसी नियंत्रण की समाप्ति की घोषणा कर दी और साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के खिलाफ एक सम्मिलित संघ बनाने की अपील की। इसने चीनी समाज और बुद्धिजीवी वर्ग में आशा और विश्वास का नया संचार किया, जिसकी परिणति अंततः 1921 ईस्वी में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के रूप में हुई। हालांकि अभी भी महत्वपूर्ण पार्टी कुओमिंतांग ही थी और सुन इनके नेता थे, पर यह पार्टी अत्यंत संगठित नहीं थी और जनसमूह का एक अस्थिर रूप थी। सुन ने इसके पुनर्संगठन की आवश्यकता महसूस की और इसके बाद अक्टूबर क्रांति के प्रभाव और लेलिन से मुलाकात के बाद सुन यातसेन ने एक मजबूत संगठन की स्थापना की कोशिश की। उन्होंने अपने दल को पुनर्गठित किया, जिसका आधार बोल्शेविक सिद्धांतों पर टिका था और वह लेलिन जैसे संगठनकर्ता से अत्यंत प्रभावित था। इस तरह सुन ने लेलिन के संगठनात्मक सिद्धांत को अपनाने की कोशिश की, जो कुओमिंतांग के पुनः संगठन और प्रजातांत्रिक केंद्रीयकरण पर आधारित था। इसके अतिरिक्त सुन ने अपनी विचारधारा को भी संशोधित किया और चीन को तीन जन नीतियों, थ्री पीपल्स प्रिंसिपल का आधार प्रदान किया। इन नीतियों में सबसे पहले सोवियत संघ से मैत्री शामिल थी। यह सोवियत समाजवाद और चीनी राष्ट्रवाद के बीच एक तरह का दोस्ताना संबंध था। दूसरे, कुओमिंतांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मेल ने, जो लोकप्रिय रूप में प्रथम संयुक्त मोर्चा, फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट के रूप में जाना जाता है, चीनी राजनीतिक आदर्श को एक नया आधार प्रदान किया। सुन का विश्वास था कि राष्ट्रवादी शक्तियां आपस में मिलकर दो प्रमुख चीनी शत्रुओं, सामंत वर्ग और साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकेंगी। तीसरे, उन्होंने आम चीनी जनता के पास जाने की धारणा अपनाई और राजनीतिक कार्यों के लिए लोगों में जागरूकता के महत्व को पहचाना। 1924 ईस्वी में, जो अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष था, सुन ने तीन जन सिद्धांतों का संशोधन किया और कुओमिंतांग का पुनर्गठन करके साम्राज्यवाद विरोधी भावना को बढ़ाया तथा क्रांति को वह लोकप्रिय नैतिक शक्ति प्रदान की जो 1911 से 12 ईस्वी की क्रांति में भी नहीं थी। अपने 30 वर्षों के लंबे राजनीतिक जीवन में सुन यातसेन संघीय चीन की स्थापना नहीं कर पाए। अपने समकालीन अन्य राजनीतिज्ञों के विरुद्ध उन्होंने व्यक्तिगत भविष्य के निर्माण के लिए किसी भी नीति का प्रतिपादन नहीं किया। उन्होंने हर समय बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही प्रयास किया, जिनमें एक आधुनिक और शक्तिशाली स्वतंत्र प्रजातांत्रिक और समाजवादी चीन का निर्माण शामिल था। नारे के रूप में भी उन्होंने सम्मिलित नीतियों, प्रतिबद्धता आदि का ही प्रयोग किया और इन्हें आशातीत समर्थन मिला। सुन द्वारा शक्ति प्राप्त करने की दिशा में लंबे प्रयास की असफलता ने भी सांकेतिक रूप से उनकी एक विस्तृत दृष्टि का ही परिचय दिया। इस संदर्भ में वह चीनी राष्ट्रवाद के जननायकों की प्रथम श्रेणी में आते हैं। सुन की असली सिद्धांतों की खोज हालांकि अपेक्षाकृत कम प्रशंसात्मक है, क्योंकि वह एक महान विचारक नहीं थे। उन्होंने राजनीतिक दर्शन की बजाय कमचलाऊ ढंग से कार्य करने की ओर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन इतिहास में उनकी भूमिका और व्यक्तिगत नेतृत्व की क्षमता सिर्फ इसलिए ही अमान्य नहीं की जा सकती कि वह एक राजनीतिक विचारक नहीं थे, बल्कि उनका स्वयं का राजनीतिक दर्शन, विचार और तरीका ही उन्हें इतिहास में विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। उनके संशोधित राजनीतिक विचार राजनीतिक समस्याओं के समाधान और व्यवहारिक मसलों को लागू करने के कारण महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अपने विचारों को प्रस्तुत करने की उनकी खास पद्धति ही उन्हें औरों से विशिष्ट बनाती है, क्योंकि उसी ने उन्हें एक बेहतर शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि प्रदान की। वह गजब के आशावादी थे, जो अपने अटल निर्णयों और कार्यों में विश्वास करते थे और मानते थे कि वह गलत नहीं हो सकते। इस तरह वह चीनी इतिहास में अपनी जगह बनाने में पूर्णतः सक्षम रहे। चीनी शिक्षित समाज और विदेशी समर्थकों की सहायता उनके दो अत्यंत मजबूती से स्थापित किए गए सत्य थे। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सुन ने प्रायः अपने प्रयासों की पूर्ति के लिए समझौतावादी दृष्टिकोण भी अपनाया, जिसे हम व्यापक राजनीतिक राष्ट्रीय परिदृश्य में जनतांत्रिक और राष्ट्रवादी हितों को लागू करने के रूप में देख सकते हैं। वह एक उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति भी थे, जो सुन या सेन के व्यक्तित्व के दो पक्षों को उद्भाषित करता है। तीव्र इच्छा रखने वाला और विश्वसनीय एवं सक्षम समायोजन जनकर्ता। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उनकी कार्यपत्ति जो भी रही हो, पर संपूर्ण रूप से सुन यात-सेन ने चीनी राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसलिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि उन्हें चीनी राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है।